श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नानाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूत भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसाद निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूत स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदा स्वयं स्वयं है स्वयं नहीं है स्वयं का अर्थ दूसरा होगा और स्वयं का अर्थ दूसरा है स्वयं शब्द है स्व सह अयम स्वयं 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 रूप श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूत स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम् वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि ने जो चित्रकेतु महाराज को विद्या दिया वो उसी की आवृत्ति सब लोग करेंगे एक साथ। माइक ले लीजिए श्लोक 28 से चल गए 18। ओम नमस्तुभ्यं भगवते
नमस्तुभ्यं भगवते
साथ में पढ़िए
ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय प्रदम्नाय निरोधाय संकर्षणाय नमो विज्ञान मात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मा रामाय शांताय
शक्तिर्मय नमः
केशाय महते नमस्ते स्वमूर्तये प्राप्याय मनसा सह सदसत्पर यस्मिन्नमयेष्ति तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्नस्ति सन्ति न वेदो मनोबोधेन्द्रिया सवः अन्तर्बहिः च निथकम् व्योमवर्त्मनोऽस्म्यहम् देहेन्द्रिय प्राण मनो धियोनि यदं सविधा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवाप्त तप्तम् स्थाने सुतद्रष्टपदेशमेति। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाद्भूतिपते सकलसात्वत्परिगृह्णीकरकरमलकुमलोपलालितचरणारविन्दयुगल।
भक्ताय इत्थं प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः द्वयो अङ्गिरसा साकम् धाम स्वयम्भुवम् चित्रकेतुस्तुताम् विद्याम् यथा नारदभाषिताम् धारयामास सप्ताहम् अभक्ष सुसमाहितः। यहाँ से सब लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। महानुभावाय
महानुभावाय
महाविभूतिपतये
महाविभूतिपतये
सकल सात्वत
सकल सात्वत
परिव्रीढ़
निकरा
करकमल
करकमल
कुडमलोपलालित
कुडमलोपलालित
चरणारविंद जुगला
चरणारविंद जुगला
परमा
परमा
परमेष्ठिन
परमेष्ठिन
नमस्ते
नमस्ते।
श्री शुक उवाच।
विद्या है यहाँ तक ये मंत्र है जिसका जप किया महाराज ने नारद जी ने बताया जप का क्या प्रभाव हुआ इसका वर्णन करते हैं। भक्तायतम प्रपन्नाय विद्याम आदिश्य नारद जया वांगिरसा साकम् धाम स्वयं भुवं प्रभो चित्तकेतुस्तु विद्यां ताम् यथा नारद भासिताम् धारयामास सप्ताहम् भक्षासु समाहितः ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्याधार्यमाणया
विद्याधराधिपत्यम्
सलेभ्य प्रतिहतम् नृप ततः कति पयाहोर्भिः विद्ये धमनो गति जगाम देवदेवस्य
जगाम देवदेवस्य
शेषस्य चरणान्तिकम्
शेषस्य चरणान्तिकम्
मृणाल गौरम् शितिवास संस्फुरत्
गौरम् शितिवास संस्फुरत्
किरीट केयूर कटित कंकणम
किरीट केयूर कटित कंकणम
प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनमृतम
प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनमृतम
ददर्श सिद्धे स्वरमन
ददर्श सिद्धे स्वरमन जय प्रभु।
तदर्शन ध्वस्त समस्त किल्मिषा
तदर्शन ध्वस्त समस्त किल्मिषा
स्वच्छा मलांत कर्णो भयान मुनि
स्वच्छा मलांत कर्णो भयान मुनि
प्रविद्ध भक्त्या प्रणया सुलोचना
प्रविद्ध भक्त्या प्रणया सुलोचना
प्रहिष्ट रोमा नमदादि पुरुषम
प्रहिष्ट रोमा नमदादि पुरुषम
स उत्तम श्लोक पदाब्जिष्टरम
सर्वोत्तम श्लोक पदाब्जिष्टरम
प्रेम प्रेण प्रेमणो परुद्धाखिल बाण निर्गम
प्रेमो परुद्धाखिल बाण निर्गम
नैवासकर्तम प्रसमीडितम चिरम
नैवासकर्तम प्रसमीडितम चिरम
इस विद्या का निरंतर जप करने से पढ़ने से राजर्षि चित्रकेतु को भगवान का दर्शन हुआ है, इसी का वर्णन हो रहा है। भगवान शेष का जो सबसे नीचे पाताल लोक में रहते हैं, इस पृथ्वी को अपने सिर पर उठाए रहते हैं, तो भगवान कैसे हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। मृणाल गौरम भगवान श्री बलराम शेषनाग मृणाल की तरह गौर हैं, गोरे हैं। मृणाल कहते हैं कमल के नाल को। मृणाल गौरम सितिवास सम और कैसा वस्त्र पहने हैं, नीला सिति। और बहुत सुंदर चमक रहे हैं आभूषण भगवान के, सिर पर किरीट लगाए हैं, मुकुट केयूर हाथों का गहना है, कटित्र कमर का गहना है, बेल्ट कंकड़म ये बाजूबंद है, कलाई का गहना है, इसको लगाए हैं भगवान। बहुत सुंदर लग रहे हैं, स्फुरत चमक रहे हैं। इस तरह से श्री भगवान को देखकर चित्रकेतु महाराज पुलकित हो गए, उनके आंखों से आंसू आने लगा, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम जब कर रहे थे तो अपने सिर को उन्होंने रखा भगवान के चरण रखने की चौकी पर, जहां भगवान चरण रखते थे, और चरण के ऊपर चौकी पर बिस्तर लगाया गया था, बहुत सुंदर मखमल का गद्दा था। तो उस पर प्रणाम किए, लेकिन इतना प्रेम उमड़ा कि प्रणया सुलोचना आंख में आंसू भर आए, आंसू टपकने लगा, और उससे भगवान का चरण रखने का आसन गीला हो गया। और बहुत देर तक वे देखते रहे कृष्ण को, भगवान को कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि प्रेम के कारण सारे वर्णमाला अवरुद्ध हो गए, को बोली निकल नहीं रही थी। जो वर्णमाला है सारे वर्णमाला अवरुद्ध हो गए, अर्थात उनका गला भर आया, वे कुछ बोल नहीं पाए। चिरम देर तक वहीं प्रणाम किए रहे और बार बार आंसू निकल रहा था मुंह। उपमेय है हम उस भगवान के चरण रखने की बेड को भिंगोर दिए। सब उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम भगवान के चरण कमल के बिस्तर को उपमेय है, यानी प्रेम के आंसू आंख में उमड़ रहे थे, इससे भगवान का चरण कमल का बिस्तर, बिस्तर माने बेड, गीला हो गया और बहुत देर तक कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने मन को समाहित किया और प्रतिलब्ध भाग स्वरूप बोलने की शक्ति आ गई, तब इस प्रकार बोलने लगे। चित्रकेतु महाराज भगवान की स्तुति किए, वो आगे वर्णन है। इस प्रकार से इस विद्या का प्रभाव दिखा गया। उतना आसक्त व्यक्ति पुत्र में, स्त्री में, घर में, और केवल नारद मुनि के द्वारा सिखाए गए भगवान की विद्या को, स्तुति को, मंत्र को पढ़ते रहे 7 दिन, बहुत नियम पूर्वक बस पढ़ते रहे। पढ़ने से ही इनके मन में इतना शुद्धि आ गई, मन का स्पीड बढ़ गया और वे शेष भगवान के चरण कमल के पास चले गए और चरण कमल के पास जाकर के उनका प्रेम और अधिक उमड़ गया। शरीर में पुलक छाया था, आंख में आंसू भरे थे, बाणी गदगद थी, बाणी से बोल नहीं पा रहे थे। प्रेम के जो सात्विक विकार हैं ये सब आ गए। इतना आसक्त व्यक्ति पुत्र के मोह में रो रहे थे, वही आज भगवान के प्रेम में डूब गए। देखते ही ये है इस विद्या का प्रभाव। इसी तरह से हम लोग यदि महामंत्र जपते रहेंगे तो एक दिन समय आएगा कि भगवान के पास यही महामंत्र हमको पहुंचा देगा। इसलिए श्रद्धा के साथ इस मंत्र को जपना चाहिए और श्रीमद् भागवत के श्लोकों को बहुत ध्यान से, प्रेम से पढ़ना चाहिए। केवल 7 दिन 7 रात जप करने से चित्रकेतु महाराज सिद्ध हो गए, भगवान के पास चले गए, भगवान से बातें भी करेंगे, आगे वर्णन है। पहले कंठ गदगद हो गया इसलिए बोल नहीं पाए, केवल रो रहे थे प्रेम के कारण। कुछ देर के बाद जब बोलने की शक्ति आई, उन्होंने अपने मन को समाहित किया, बुद्धि से समझाया, तब रोना रुका, तब भगवान के गुण का वर्णन करने लगे। तो इस तरह की सफलता एक ऐसे व्यक्ति को मिली जो 1 करोड़ स्त्रियों में आसक्त था और पुत्र के लिए विकल था, परंतु संत संघ का ऐसा प्रभाव है, साधु के संघ का, श्री नारद मुनि के संघ का, कि थोड़े से संघ से वे चित्रकेतु परम वैष्णव हो गए, भगवान का दर्शन किए, भगवान में प्रेम हो गया। यह घटना सिखाती है कि हमें भी उत्साह रखना चाहिए। यद्यपि हम लोग माया में हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, धन में, घर में आसक्ति है, लेकिन फिर भी जप करने की शक्ति है ना, जप करना चाहिए, यही एक साधन है। जहां रहे वहां पुकारे भगवान को, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवान, कृपया तो पाद पंकज धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंद महाराज के लाला कृष्ण, मैं आपका दास हूं, लेकिन जैसे तैसे मैं संसार में गिर गया, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया। आप हमें अपने चरणों की धूल समझिए, उनको इससे निकाल दिए, इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। तो श्री भगवान से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोग शिक्षाष्टक में पढ़ते हैं रोज, प्रेम से पढ़ना चाहिए। यहां केवल 7 श्लोक हैं जिसको चित्रकेतु महाराज ने बार बार पढ़ा। ओम नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि, इसमें प्रणाम है बार बार और भगवान के नाम का कीर्तन है। मैं भगवान को नमस्कार करता हूं, भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूं। नमः धीमहि का यह अर्थ है कि मैं मन में नमस्कार करता हूं। नमः धीमहि, मैं ध्यान करते हुए भगवान को प्रणाम करता हूं। यह बार बार कहा गया है, बार बार भगवान का नाम आया है, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, ये सब भगवान के नाम है। सबसे बेस्ट है हम लोगों के लिए ये महामंत्र। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरे
हरे राम हरे राम।
एक बार स्वयं नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि इस घोर कलयुग में किस उपाय से व्यक्ति जन्म मृत्यु को पार कर सकता है। तब श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि ये 16 नाम का महामंत्र है, इसी को जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और यह भी कह दे, नातः परतरोपायम सर्व वेदेश विद्यते, समस्त वेदों में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। नातः परतरोपायम सर्व वेदेश विद्यते, ब्रह्मा जी तो सारे वेदों के विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि सभी वेदों में सभी ग्रंथों में इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बताया गया है। विश्वास करना चाहिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम नास्ते नास्ते नास्ते। वेद शास्त्रों में उपाय तो बहुत बताए गए हैं, लेकिन इस कलयुग में सब हो नहीं पाएंगे। मनुष्य में न बुद्धि है न शक्ति है, कर नहीं सकता है। एक असमृद्ध जग करना हो तो कोई संसार का सारा विद्वान मिल करके नहीं कर सकते। सारे राजा नेता मिल जाए, एक असमृद्ध जग करना चाहे, नहीं कर सकते। उसमें बहुत ज्यादा सोना चाहिए, बहुत धन चाहिए असमेध जग के लिए। आजकल तो केवल कागज पर छाप देते हैं कि हम जग कर रहे हैं, असमेध जग कर रहे हैं। लेकिन अश्वमेध जग के जो नियम है, जितना सामान जुटाना चाहिए उसमें से कुछ भी नहीं जुट पाता है। केवल एक फैशन है कि जग हो रहा है, हाहा हाहा कर रहे हैं, स्वाहा हाहा कर रहे हैं। एक बार प्रयागराज में मैं देखा था यज्ञ हो रहा था, 508 कुंड थे, बहुत दूर में पंडाल बनाया गया था, तो 108 कुंड पर चार चार व्यक्ति बैठे थे, यजमान और एक पंडित जी बैठे थे, तो पांच पांच व्यक्ति एक कुंड पर भरा था पंडाल। संयोग से हवा का चलना बंद हो गया, जग चालू हुआ, तो मैं देखा था वहां, ये विनोद की बात नहीं है, पंडित बोल रहे थे स्वाहा, तो पीछे से सभी लोग बोल रहे थे स्वाहा, तो उसमें मैं देखा अनेक पुरुष और स्त्री स्वाहा नहीं बोलते थे, हा हा बोलते, यही मनाते थे कब ये जग खत्म होगा, कब पूरा होगा, सबके आंखों में आंसू था धुआं के कारण, स्वाहा आंख पोछते थे। तो ये तो यज्ञ की स्थिति है, कोई तप नहीं हो सकता है। एक दिन उपवास करने में ही हालत बिगड़ जाती है, पर ऋषियों ने सब मिलाकर के समझाया है कि एक ऐसा रास्ता है जो चल सकता है, जिस साधन है जो हम कर सकते हैं, और वो है भगवान का नाम जपना, नाम कीर्तन करना, ये कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बड़ा बड़ा मंदिर बनाना चाहें बना नहीं पाएंगे, बनाए भी ले तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन तो कर सकते हैं, समूह में भी और अकेले भी, अकेले भी कीर्तन करते हैं माला पर, संकीर्तन, नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, कहीं भी कर सकता है व्यक्ति, इतना सरल साधन है, यही विद्या है, सब प्रकार का ज्ञान हो जाएगा इसी से, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर निष्ठा चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए। एक बहुत बड़े ऋषि हो गए हैं बहुत पहले इस देश में, जिनका नाम था वाल्मीकि, वो ब्राह्मण थे, परंतु जब किशोर अवस्था के थे उसी समय कुछ डाकुओं का संग हो गया, उन डाकुओं के संग में वो बहुत बड़े डाकू हो गए, डाकुओं के संग रोज डाका डालना, चोरी करना, हत्या करना, यही उनका काम था। ये जंगल में रहते थे, उस जंगल में एक रास्ता निकल रहा था जिस पर बहुत से यात्री जाते थे, तो रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर वाल्मीकि का घर था, वो रास्ता पर आकर के यात्रियों को लूटता था, उनके पास जो कुछ होता था छीन लेता था, और उनका उनकी जान मार देता था, क्योंकि बहुत क्रूर डाकुओं का संग हो गया था, इसीलिए वो लड़का सयाना होने पर भी डाकू ही बन गया। उसने विवाह किया, उसको एक लड़का भी हुआ। तो सदा यात्रियों को मारना, उनका वध करना और उनसे पैसा छीन लेना, उनका सामान छीन लेना, यही उसका काम था और दूसरी कमाई नहीं थी, इसी से परिवार का पोषण कर रहा था। स्त्री को देता था, अपने माता पिता को भी देता था, सबका पालन कर रहा। संयोग की बात है, एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते हुए उस रास्ते पर जा रहे थे, तो आवाज सुन करके वो अपने घर से बाहर निकल आया और नारद जी को देखा। तुरंत उसने वही काम किया जो अन्य यात्रियों के साथ करता था, मारने दौड़ा, पर श्री नारद मुनि का ऐसा प्रभाव था वो मार नहीं पाया, पकड़ लिया, कहने लगा ये तुम वीणा बजा रहे हो ये रखो और तुम्हारे पास जो भी पैसा हो निकालो। नारद जी के पास कोई पैसा कहां से था, वो तो एक वीणा लेकर चलते हैं, वो वीणा भगवान दिए हैं। तो नारद जी ने यह कह दिया, तुम क्या करते हो इस कमाई से, तो मैं अपने परिवार का पालन करता हूं, तो ये बहुत बड़ी कमाई, बहुत बड़ा पाप है, इतनी हत्या कर रहे हो, कोई तुम्हारे कमाई में हिस्सा नहीं लेगा, पाप सब तुमको लग रहा है, इससे घोर नरक मिलेगा, नरक में गिर जाओ। नरक क्या चीज है ये भी उन्होंने बताया, वहां जमराज जी बहुत मारते हैं, जलाते हैं, बहुत प्रकार के कष्ट है। तो श्रद्धा से सुन लिया, कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, मैं जिस परिवार का पालन करता हूं वो हमारे पाप में हिस्सा नहीं लगाए, कैसे हो सकता है, हम विश्वास नहीं करते, हम जिनके लिए चोरी करते हैं, जिनके लिए हत्या करते हैं, वो हमारे पाप में हिस्सा नहीं लेंगे, ये मैं कैसे जानूं। तो नारद जी ने कहा, मैं यहां रुकता हूं, अपने घर जाकर के पूछा हो कि वे लोग पाप में हिस्सा लेंगे, तो वो कहा कि ऐसे चलाक हो तुम, मैं उधर जाऊं पूछने, उधर तुम 9-10-11 हो जाओ, इतना चलाक बनते हो। तो नारद जी ने कहा, हमको यहीं पर बांध दो, हाथ पीछे करके पेड़ में हमको बांध दो, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं रहूंगा, जाकर पूछाओ। तो तुरंत वन में बमर लता आदि को काट करके लाया, उसकी रस्सी बना करके और नारद जी को पेड़ में पीछे हाथ करके बांध दिया। नारद जी खड़े रहे, ये कृपा है संत की, उन्होंने सोचा कुछ देर बंध जाऊं पर इसका उद्धार कर दूं। तो दौड़ा हुआ घर गया, घर में गया, उसके उसका बच्चा था, उसकी पत्नी थी और बूढ़े माता पिता थे, ब्राह्मण का परिवार था, पर ब्राह्मण जब भ्रष्ट होते हैं तो एक नंबर के राक्षस हो जाते हैं। जाकर के पूछा सबसे पहले अपने पिताजी को, पिताजी से पूछा पिताजी हम जो कमाई करते हैं बहुत लोगों का वध करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो इससे पाप लगता है, एक साधु बता रहा था। तो उस पाप में आप हिस्सा लेंगे ना? तो बाप ने कहा, बेटा जब मैं जवान था तब तुम्हारा पालन पोषण किया, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का हमने पालन किया, लेकिन पाप लेने में क्या कैसे किया जाता है, मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता, अगर पाप मिले भी तो मैं नहीं लूंगा, नरक में कौन जाएगा। तब वह अपने मां के पास गया, वही प्रश्न किया कि मां तुम हमारे पाप में हिस्सा लोगी कि नहीं। वह बोली, बेटा मैं जो देते हो पका लेती हूं, खा लेती हूं, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी कहे हैं वही मैं जानती हूं, मैं पाप में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। अब उसके सामने, वाल्मीकि के सामने अंधकार छाने लगा, आंखों के सामने माता पिता हमारे पाप में हिस्सा नहीं लेंगे। तब वो अपनी पत्नी के पास गया बहुत आशा से, और पत्नी से कहा, तुम हमारे पाप में हिस्सा बटाओगी कि नहीं। उसने सुनते ही कहा, स्वामी मेरी सेवा है, आप मेरा धर्म है आपकी सेवा करना, आपके लिए भोजन बना देती हूं, मुझको क्या पता कि आप कहां से लाते हैं, अन्न कहां से लाते हैं, पैसा कहां से लाते हैं, यदि यह सब जुटाने में पाप है तो पाप में मैं हिस्सा नहीं लूंगी, अगर किसी उपाय से कोई देने भी लगे तो मैं पाप नहीं लूंगी। अब पूर्ण निराश होकर के अब बाद में अपने छोटे बेटा से पूछा, बेटा तुम मेरे साथ नरक में जाओगे, मेरे पाप को लोगे? उसने कहा, नहीं पापा, मैं तो पाप नहीं ले सकता। कि तुम्हारा काम है तुम डकैत डालो, चोरी करो, हत्या करो, तुम भोगोगे। तो वो डाकू वाल्मीकि वहां से वन की ओर चला, नारद जी को जहां बांधा था, दौड़ करके आया नारद जी के पास और कहा कि आप जो कहे वो बिल्कुल ठीक है, कोई पाप में हिस्सा नहीं लेगा। तो फिर नारद जी को प्रणाम किया और बंधन सब खोल दिया और कहा कि आप उपाय बताइए, मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। तब उपाय नारद जी ने बताया, तुम राम राम जपो। बार बार उन्होंने कहा राम, लेकिन वो राम उसके मुंह से नहीं निकला, इतना सीधा सरल नाम। लोगों को मारा था, मरा हुआ देखा था, इसलिए उसके मुख से मरा शब्द निकला। कितना भी प्रयास किया नारद जी ने राम राम, लेकिन वो मरा मरा कहता। तो मरा मरा भी यदि रिदम में कहा जाए, तीन चार बार कहा जाए, तो राम राम निकलने लगता, मरा 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 आ जाता। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, अगर यही तुमको याद है तो यही जपो। इतना कह करके वे चले गए और वह वाल्मीकि डाकू नाम जपना चालू किया, मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप किया वाल्मीकि ने, लेकिन श्रद्धा थी कि यह हमारे पापों को नष्ट करेगा, उनको नरक से बचाएगा, बहुत श्रद्धा थी। उसने जपना चालू किया, नारद जी उधर गए और वो जपना चालू किया। जपते जपते दिन बीत गया, रात आई, रात भर जपा, फिर दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, इस तरह से सप्ताह बीता, 15 दिन बीता, महीना बीत गया, साल बीत गया जपते जपते। और इतना जप में निष्ठा हुई कि उसके शरीर पर दीमक लग गए, दीमक का घर बन गया जिसको बाल्मीक कहते हैं, और उस बाल्मीक पर फिर घास उग गई। फिर वो जप करता रहा, इतनी निष्ठा थी, भूख प्यास का तो पता ही नहीं, उसको केवल यही चिंता थी कि हमें जप करना है। राम 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 राम, वो तो राम राम नहीं कर रहा था, उल्टा मरा मरा, लेकिन वो जपता ही रहा। अंत में देवलोक में हल्ला हो गया कि एक ऐसा तपस्वी है, अपने कमंडल का जल, गंगा जी का जल वाल्मीकि पर फेंका। तब वाल्मीक ढह गया, उसमें से निकला वो मुनि ब्राह्मण जो भगवान का नाम जप रहा था। वही वाल्मीकि जी भगवान राम के अवतार के पहले पूरा रामायण लिख दिए। भगवान कब क्या बाण छोड़ेंगे, किससे क्या बात करेंगे, सारी बातें अभी भविष्य में भगवान का अवतार होने वाला है, अवतार लेकर क्या क्या करेंगे, उसको बीते हुए की तरह वाल्मीकि ने देख करके लिख दिए। वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध ही है, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के समान होगा केवल जप करने से, जप ऐसे करना चाहिए। सवेरे भोजन का समय हो जाता है तो जपते जपते यदि भोजन भूल जाए तो बहुत अच्छा है, बार बार माता जी कहे या पत्नी कहे कि अब खा लीजिए, तो जप में इस तरह से राग हो जाए कि खाने की चिंता न रहे, काम धंधा भूल जाए, तब यह अच्छा है। ऐसे रूटीन खराब नहीं करना चाहिए पत्नी का, और भोजन समय पर दे तो खा लेना चाहिए, लेकिन खा करके फिर जप करे, खाने के बाद जप ही असली काम होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। सोने में कटौती हो जाए, यदि सोना में कम सोएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता है जप करने का, समय सबको भगवान ने बराबर दिया है, दिन और रात, ये आपकी मर्जी पर है कि आप उसमें से कितना समय जप में लगाएंगे। दो घंटा पर्याप्त माना जाता है, प्रभुपाद जी ने कहा है 2 घंटे में 16 माला हो जाएगा आराम से। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनियो सदा हरि, सब समय कीर्तन करना चाहिए। तो सदा तो नहीं कर पाए तो कम से कम 2 घंटा करें, 2 घंटा से भी अधिक करें तो और अच्छा है, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि 24 घंटा करो, 24 घंटा नहीं करेंगे तो 22 घंटा करें, 22 घंटा नहीं करेंगे तो 20 घंटा करें, या 18 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, उनमें घटाते घटाते 2 घंटा, ये प्रभुपाद जी ने कहा। अब इतना भी नहीं कर सकते तो ये बेकार मनुष्य बने। इसे तो अच्छा था सुअर कुकर बन गए होते, ऊंट बन गए होते। तिनते खल सुकर स्वान भले, ऐसे मनुष्यों से अच्छे हैं कुत्ते, खर, गधा, बेचारे वो तो अपना कर्म बंधन खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे वे मनुष्य शरीर में आएंगे, शुभ गति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, केवल सांसारिक काम धंधा में रहता है, तो अपने को गिरा रहा है, नीचे जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, तो निश्चित है कि मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर पशु देह मिलेगा, पक्षी का शरीर मिलेगा। तो हम तो ऐसे जगह पर खड़े हैं कि अपने आप नीचे चले जाएंगे, तो हमसे अच्छे भी पशु हैं जो ऊपर जा रहे हैं। तो यह बात याद आ गई, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से, प्राणायाम करने से चित्रकेतु महाराज इतने बड़े वैष्णव हो गए, वही वृत्रासुर बने जो युद्ध में भी भगवान में मति लगाए रखे। इनकी स्तुति कुछ ही श्लोकों में है। अजिता जिता सममति भी, हे अजित, आप किसी के वश में नहीं होते हैं, लेकिन आपको साधुओं ने, सममति समदर्शी साधुओं ने आपको अपने वश में कर लिया। वश में करने का अर्थ है प्रेम से श्री कृष्ण को वश में करना। ऐसे भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता हूं, लेकिन अजिता जीता, अजित होते भी आप जीत लिए जाते हैं, वश में कर लिए जाते हैं। सममति भी, सममति भी साधु भी, साधुओं द्वारा जिनकी बुद्धि सम है, और जीतात्मा भी, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे महात्मा जन आपको अपने वश में कर देते हैं। और आप उनको अपने वश में कर लेते हैं, परस्पर वशीकारिता बताई जा रही। भगवान अपने भक्तों के वश में और भक्त भगवान के वश में। भगवान इतने करुण हैं कि अपने आप को ही दे देते हैं, इतनी दया करते हैं भजन करने वालों पर। अगर कोई भजन करता है तो भगवान इतनी दया करते हैं, इतनी दया कि उसको उसके अधीन हो जाते हैं, जैसे अर्जुन के अधीन है। अर्जुन के रथ को कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं। अर्जुन आराम से बैठे रहते हैं। युद्ध जब खत्म होता है महाभारत में, तो युद्ध खत्म होने के बाद प्रतिदिन भगवान घोड़ों को धोते हैं, घोड़ों को भोजन देते हैं, पानी पिलाते हैं। अर्जुन आराम से उतर करके अपने कैंप में चले जाते हैं, लेकिन भगवान को चिंता रहती है घोड़ों को खिलाने की, घोड़ों को धोने की। और कोई बाण लग गया है घोड़े पर तो उस बाण के जख्म को मिटाने की चिंता रहती है कृष्ण को। एक बार की घटना है, कर्ण सेनापति था। कर्ण बहुत बड़ा वीर था। उसने ये प्रतिज्ञा की एक दिन की, मैं निश्चित अर्जुन का वध करूंगा। तो उसके पास एक अस्त्र था। जब उसने कवच और कुंडल दान दे दिया इंद्र को, तो इंद्र अब्लाइड होकर के एक अस्त्र दिए उसको। उसका नाम था एकाग्नि, एक वीर को अवश्य मारेगी, ऐसा अस्त्र था, बाण था। तो एक दिन दुर्योधन कहा कर्ण से कि इस बाण को चलाओ। वो भगवान की योजना थी। भीमसेन का एक लड़का था घटोत्कच राक्षस, तो उसको भगवान ने सिखाया कि आज रात्रि युद्ध होगा। रात में सो जाते थे लोग, लेकिन उस दिन स्पेशल युद्ध होगा, रात में भी युद्ध होगा। युद्ध होने लगा रात में, और घटोत्कच को कहा कि तुम जितनी शक्ति है उतना दिखा दो कौरव सेना को। वो घटोत्कच लगा मारने, बहुत भयानक रूप था उसका। वो आकाश में से उड़ करके युद्ध करने लगा। उस पर कितना भी बाण मारा जाता था वो गिरता नहीं था। अंत में दुर्योधन घबरा करके कर्ण के पास आया, कहा कि मित्र इसको तुम मारो, तुम्हारे पास जो एक अग्नि है उसको चलाओ। तो दुर्योधन कहता है, कर्ण कहता है कि मैं तो उसे रखा हूं अर्जुन को मारने के लिए। दुर्योधन ने कहा कि सब मर ही जाएंगे तो तुम अर्जुन को मार कर क्या करोगे, आज तुम बचाओ सबको, इसको मारो, ये राक्षस इस तरह से सबका विनाश कर देगा। तो घबरा करके कर्ण एक अग्नि चला दिया, घटोत्कच गिर पड़ा, मर गया। लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने कहा महाराज युधिष्ठिर से, आज अर्जुन बच गए इसकी मुझे बहुत खुशी है, घटोत्कच के मरने की चिंता नहीं। जब तक यह एक अग्नि शक्ति थी कर्ण के पास, मैं रात में सोया नहीं, रात दिन यही चिंता रहती थी कि एक अग्नि कैसे खत्म हो। भगवान को चिंता थी लेकिन अर्जुन को चिंता नहीं थी, अर्जुन निश्चिंत सोते थे। तो श्री भगवान एक अग्नि को छुड़वा दिए घटोत्कच पर, तब ये सुखी हुए। इस तरह भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में कर देते, वे अर्जुन के वश में। अर्जुन कहते हैं कि सेना और उभयोर मध्य रथम स्थापे, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। तो भगवान रथ को ले जाकर खड़ा किए, वहां से फिर दोनों पक्ष की सेना को दिखाने लगे। जैसे अर्जुन कहते थे वैसे ही भगवान करते थे। जैसे भगवान अपने मां के वश में है यशोदा मैया के, उसे अनेक भक्तों के वश में रहते हैं, वैसे भगवान अजित हैं। अजित का अर्थ होता है जिनको वश में नहीं किया जा सकता, जिनको जीता नहीं जा सकता। पर वे भी अपने भक्तों के द्वारा जीत किए जाते हैं। एक दिन जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय की घटना है, श्री भगवान शिविर में जगे थे रात्रि का समय, आधी रात के समय, नींद नहीं आई, तो अकस्मात युधिष्ठिर महाराज भगवान के रूम में चले गए और महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि द्वारकाधीश आपको नींद नहीं आई है क्या? तो नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो किस कारण से? कि भगवान ने कहा कि मेरे भक्त भीष्म पितामह मेरी याद कर रहे हैं, अतः मुझे नींद नहीं आ रही। भीष्म पितामह के याद में भगवान जगे थे और फिर युधिष्ठिर महाराज के साथ समस्त पांडवों के साथ वे गए भीष्म के पास। भीष्म चाहते थे कि मैं कृष्ण को देख करके दर्शन करते हुए शरीर त्याग, बाण सज्जा पर सोए सोए वे प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की। तो भगवान निद्रा को छोड़ करके अपने भक्त को याद कर रहे थे। ये है भक्त वश्यता, भक्त के वश में रहना। तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि श्री भगवान अजित हैं, किसी के वश में नहीं है, लेकिन वे भक्तों के वश में है। और भक्त कैसे? जिनमें कामना नहीं है, समस्त कामनाओं से रहित हैं, अपने मन को वश में कर लिए हैं, ऐसे साधुओं के वश में श्री भगवान रहते हैं। एक श्लोक में कहते हैं, हे भगवान, आपके दर्शन से मेरे सारे पाप कट गए हैं, यह कोई आश्चर्य नहीं है। आपका केवल एक बार नाम उच्चारण करने से पुलकस भी संसार बंधन से मुक्त हो जाता। ये भगवान के नाम की महिमा इस स्तुति में आई है। एक बार सकृत, एक बार नाम सुन लेने से पुलकस भी, चंडाल भी, सबसे अधम मनुष्य भी आपके धाम में आ जाता है, उसका संसार बंधन, जन्म मरण का बंधन मिट जाता है। 21 श्लोक में है, देखिए अंत में है वही शब्द, मुच्यते संसार। नहीं भगवान अघटितम इदम तदर्शनान नाम अखिल पापक क्षय। आपका दर्शन करने से मनुष्यों का सारा पाप नष्ट हो जाता है, यह कोई असंभव नहीं है। मैंने अपने जीवन में देखा है आपके नाम का ऐसा प्रभाव। जन नाम सकृत श्रवण श्रवण, आपका नाम एक बार भी सुनने से जन्म मृत्यु से पार हो जाता है, और वो भी कौन? पुलकस, कुत्ते का मांस खाने वाला, चंडाल भी मुक्त हो जाता है। मुक्त होता है कौन? सबसे गर्हित व्यक्ति, और एक बार नाम सुनने से। सकृत का अर्थ होता है एक बार, सकृत नाम श्रवणा, एक बार नाम सुनने से। इसीलिए भक्तों को प्रभुपाद जी ने आज्ञा दिया, गली गली में, नगर में कीर्तन करो, कम से कम सुनेंगे जीव, मनुष्य सुनेंगे, और मनुष्य के अलावा कितने कुत्ते सुनेंगे, गाय सुनेंगे, पशु सुनेंगे, पेड़ पौधे सुनेंगे, उनका कल्याण होगा। ये अपने कुटिया में बंद रह करके गुप्त भजन मत करो, कीर्तन करो, नगर कीर्तन गांव गांव में। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर से, हे हरिदास जी, मैं एक बात के लिए चिंतित हूं, ये पशु और पेड़ पौधे भगवान का नाम बोल नहीं पाते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, आपका नाम ऐसा है कि इसको कोई एक बार सुने भी तो उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की बात का ये प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण। सकृत जन्नाम श्रवणात मुच्यते पुलक सोपी संसारात। उद्धार में क्या संसार से जन्म मृत्यु से पार हो जाता है एक बार नाम सुनने से, तो ये कीर्तन करने वाले की कितनी बड़ी महिमा है। नाम तो सुनाते हैं, गाने पर ही न कोई सुनेगा। तो उन भक्तों को बहुत धन्यवाद है जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, ये बहुत बड़ा उपकार है। इस उपकार के कार्य को करते रहना चाहिए। अपनी अपनी बुद्धि से सभी उपकार करते हैं, लेकिन उपकार कैसे होगा ये जानते कम लोग हैं। सबसे बड़ा उपकार यही है कि भगवान के नाम को सुनाया जाए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
ये है शास्त्र प्रमाण। ये श्लोक देख रहे हैं ना, 44वां श्लोक, नहीं अघटित मिदम, यह कोई असंभव नहीं है कि आपके दर्शन से मनुष्यों का सारा पाप नष्ट हो जाता। केवल एक बार आपके नाम के सुनने से पुलकस भी चंडाल भी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। कितना सुंदर उक्ति है। इस प्रकार से महाराज चित्रकेतु भगवान की स्तुति किए, बहुत से श्लोक इसमें हैं। इस अध्याय में बाद में श्री भगवान बोलते हैं, जहां से श्री भगवान वाच है, भगवान ने कहा, हे राजन, आपने अंगिरा और नारद के उपदेश को भली भांति सुना और उसके अनुसार भजन किया, मेरे अनुशासन को माना, इससे भजन करने से संसिद्धों से आप सम्यक सिद्ध हो गए हैं और मेरे दर्शन से आप पूर्ण हो गए। सिद्ध का अर्थ है जो कमाना चाहिए, जो करना चाहिए वो आप कर चुके। मेरे प्रति प्रेम आपका बढ़ाए, बहुत अच्छा हुआ। इसका श्रेय भगवान दे रहे हैं अंगिरा और नारद जी को। अंगिरा और नारद मुनि ने आप पर कृपा किया, उनकी कृपा से आप सिद्ध हो गए, मेरे परम भक्त हो गए और मेरे दर्शन से। विद्या पढ़ने से, मंत्र जपने से और मेरे दर्शन से आप कृतार्थ हो गए। अहम भाई सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना, मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूं। अहम वही सर्वभूतानि, मैं सर्वभूतानी भूतानी का अर्थ जीव, सभी जीव मेरे ही अंश हैं, मैं ही सभी प्राणियों के रूप में हूं। भूत भावन, भूतों का पालन करने वाला, जीवों का पालन करने वाला मैं हूं। भूतात्मा, समस्त प्राणियों की आत्मा मैं हूं, सबको चेतना देता हूं। सबके हृदय में हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय संयुष्ट, ये अर्थ है। सबके हृदय में हूँ, सबका पालन कर रहा हूँ। शब्द ब्रह्म है, ये वेद शास्त्र मेरे स्वरूप है, और परब्रह्म तो स्वयं हूं, शब्द ब्रह्म के रूप में भी मैं हूं, वेद के भी रूप में हूं। ये मेरे दो शरीर हैं, शब्द वेद और श्री विग्रह। जो लोक में व्याप्त मुझको देखता है और लोक को मुझ में व्याप्त देखता है, मैं सभी में हूं और सभी मेरे भीतर है। इस सूत्र से जो देखता है, शास्त्र में मुझको देखता है, शास्त्र मेरे भीतर है और शास्त्र में मैं। जैसे सोने वाला पुरुष सोते समय सपना देखता है तो वो सारी दुनिया को अपने भीतर देखता है। वो देखता है कि मैं पहाड़ देख रहा हूं, नदी देख रहा हूं, अनेक मनुष्यों को देख रहा हूं, तो वास्तव में अपने भीतर ही देखता है। और उठने पर, सपना टूटने पर देखता है कि मैं एक जगह पर हूं, बेड पर देखता है अपने को। सपना देखने में वो सारी दुनिया को अपने में देखता है। सपना और सपने में देखी गई वस्तुएं दोनों वो व्यक्ति नहीं है, वो तो दृष्टा है, देखने वाला है। ऐसे अपने को समझना चाहिए कि मैं दृष्टा हूं, दृष्टा देह से परे, देह से भिन्न है। ज्ञान ज्ञान विज्ञान संतुष्ट मत भक्त पुरुषो भव। ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट होकर के मनुष्य को चाहिए को मेरा भक्त बने। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि बहुत बहुत शरीर मिलने के बाद, बहुत जन्मों के बाद यह शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर ये बहुत दुर्लभ है, इसको पा करके मेरी भक्ति करनी चाहिए। यदि मनुष्य शरीर में व्यक्ति भक्ति नहीं किया, न कश्चित सममाप मिला, कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। इसी शरीर में भक्ति करके सुख मिल सकता है, मुक्ति मिलेगी, भगवान का धाम मिलेगा। अगर यहां चुक गए तो फिर चांस नहीं मिलेगा, फिर अनंत काल तक अंधकार में भटकते रहेंगे, जन्म मरण में पड़े रहेंगे। भगवान इस शरीर को कह रहे ज्ञान विज्ञान संभवान। ज्ञान और भक्ति ये दोनों इसी शरीर में जन्म ले सकते हैं। बहुत ध्यान से चित्रकेतु महाराज भगवान के उपदेश को सुने। इसी को ये कह रहे हैं कि वृत्तासुर के शरीर में युद्ध के समय कि मैं जैसा भगवान शंकरचरण ने हमको सिखाया है, मैं अपने मन को उनके चरणों में रखूंगा। तो इस तरह भगवान ने सिखाया था हमको, इसको मैं बढ़िया से पढ़ा नहीं। आज दिन में बहुत लोग आ गए इसलिए पढ़ नहीं पाया। आपसे मैं क्षमा मांग रहा हूं कि ये अब इसको कल पढ़ करके आऊंगा तब बताऊंगा। प्रभुपाद जी ने सब साफ लिखा है, लेकिन सुनने पर भी प्रपट समझना कठिन है। कोई भक्त पढ़ता है तो सारी बातें समझ में नहीं आती। संस्कृत से पढ़ना, अंग्रेजी में पढ़ना, हिंदी में पढ़ना, कई तरह से पढ़ने पर तब थोड़ा थोड़ा समझ में आता। तो चित्रकेतु महाराज भगवान की स्तुति किए, तो इसके बाद श्री भगवान उनको कहे तुम मेरा कीर्तन करो, एक समाज बनाओ। तो चित्रकेतु महाराज जो विद्याधरों के राजा थे, अपने राज्य से विद्याधरों से विद्याधरों की स्त्रियों को इकट्ठा किए, जो बहुत सुंदर गाती थी, अपने विमान पर चढ़ाए हजारों स्त्रियों को, बहुत सुंदर कंठ वाली गाने वाली, और वे भगवान का कीर्तन गाती थी। और चित्रकेतु महाराज भगवान का कीर्तन सुनते हुए घूमते रहे सारे स्वर्गीय लोकों में, सब जगह। तो उनके मन में आया कि सबसे बड़े भक्त भगवान शिव हैं और शिव जी सबसे बड़े विरक्त हैं, अपने भिखारी भोला नका के दानी है, स्वयं भीख मांगते हैं लेकिन अन्यों के लिए महादानी है, बहुत बड़े त्यागी हैं। तो भगवान शिव से सत्संग करने के लिए उनके मन में इच्छा हुई कि मैं ऐसे महात्मा से सत्संग करूं, उनके लोक में जाकर के, कैलाश में जाकर। तो वे समस्त स्त्रियों के साथ जा रहे थे कैलाश। कैलाश भी भगवान शिव का घर तो है नहीं, एक पेड़ के नीचे रहते हैं, बरगद के नीचे। तो उन्होंने देखा चित्रकेतु ने कि यहां शिव जी बैठे हैं, और देखते ही ये भी देखे कि ये अपनी पत्नी को अपने गोद में बैठाए हैं, परम सुंदरी श्री पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थी और भगवान प्रवचन कर रहे थे। अनेक ऋषि महर्षि श्रोता के रूप में जुटे थे और सबके बीच में भगवान शिव प्रवचन कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। उनमें कोई आसक्ति नहीं है, काम बसना है ही नहीं। काम क्या होगा, काम तो जल करके राख हो गया था। काम बसना नहीं है, फिर भी अपनी पत्नी को अपने जांघ पर बैठाए थे। इसको देख करके चित्रकेतु ठहाका मार करके हंसने लगे। हमने सुना था कि सबसे बड़े विरक्त सबसे बड़े त्यागी महापुरुष है, और यहां आकर के हम ये देख रहे हैं, ये क्या तमाशा है। वे कुछ बोलने लगे तो भगवान शिव तो समझ गए कि तो परम वैष्णव हैं, ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन माता पार्वती को दुख लग गया, क्रोध आ गया, क्रोध से तमतमा करके वो कहने लगे, ठीक है शंकर भगवान, यदि गलती काम करते हैं, यदि इनको ठीक से प्रवचन नहीं करने आता है, धर्म का पालन नहीं करने आता है, ये गलती कर रहे हैं, तो क्या तुम ही दंड देने के लिए दंडदाता बने हो? तुम अपनी अवकात स्थिति नहीं देखते हो और शिव जी को ऐसे बोल रहे हो, तुम तुरंत राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ। क्रोध से उन्होंने साप दे दिया। अब तो साप सुन करके चित्रकेतु महाराज विमान से उतरे, उतर करके माता अंबिका को प्रणाम किए, माता पार्वती को प्रणाम किए और कहे, माता जी अगर हमारे मुख से कोई अशोभनीय बात निकल गई है तो आप क्षमा कीजिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं सांप को क्षमा नहीं करा रहा हूं, जो सांप मिला मुझे राक्षस होने का तो होना ही था, ये तो भगवान की प्रेरणा थी, आपके मुख से निकल गया। लेकिन मेरे बात से आपको दुख लगा, इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। सांप तो मुझे भोगना है, तो वही वृत्रासुर बने चित्रकेतु महाराज, जिनकी युद्ध में भी ऐसी अविचल भक्ति रही। ठीक है, कल पढ़ करके आएंगे तो कहेंगे जय श्री प्रभुपाद।